आरवी विहान से मिलकर होटल से बाहर निकल गई, ऑटो लेकर घर पहुंची। तब तक अनुपमा जी भी आ चुकी थीं। आरवी की आंखें लाल थीं और सूज भी गई थीं। सारे रास्ते उसने कैसे खुद को संभाला था वो वही जानती थी, वरना वो तो विहान की हरकतों और बातों से टूटकर बिखर गई थी। उसने खुद को संभाला और घर के अंदर जैसे ही कदम रखा, अनुपमा जी उसके पास आ गईं। उसका मुरझाया हुआ परेशान चेहरा देखकर और लाल सूजी हुई आंखें देखकर वो घबरा गईं और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों से छूते हुए चिंता भरे स्वर में बोली, क्या हुआ बच्चे, आप कहाँ से आ रही हैं? इतनी परेशान क्यों हैं और आपकी आंखें लाल और सूजी हुई क्यों हैं? आप ठीक तो हैं बच्चे? बताइए हमें क्या हुआ है, कोई बात है तो अपनी माँ से कहिए। उनका प्यार और फिक्र देखकर आरवी का मन तो किया कि उनके आंचल में जाकर छुप जाए, उससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं। उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोए, अपना दर्द बाहर निकाले, पर विहान की धमकी याद करके उसने अपने मन को मार लिया और फीके मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं माँ, पेपर्स की वजह से थक गई हूँ, फिर अभी काम से बाहर गई थी तो आँखों में कुछ चला गया, इसीलिए आँखें लाल हैं। चिंता वाली कोई बात नहीं, बहुत थक गई हूँ मैं, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, उसके बाद ठीक हो जाऊँगी। आरवी ने उनको बहलाना चाहा, पर माँ की नज़रों से बच्चे की उदासी और परेशानी कभी छुप नहीं सकती। अनुपमा जी भी समझ गई कि कोई बात है, पर वो बताना नहीं चाहती। उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास था कि वो खुद उन्हें अपने मन की बात बता देगी, क्योंकि आरवी अपने दिल की हर बात उनसे शेयर किया करती थी। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो आरवी की आँखें भर आईं। आप अभी नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, जब आपको लगे कि आपको अपने मन की बात अपनी माँ से बांट लेनी चाहिए तब हमें बता दीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। अब आप जाकर फ्रेश हो जाइए, हम लंच लगा देते हैं, आपको देखकर लग नहीं रहा कि आपने लंच किया होगा, तो साथ में लंच करते हैं। अनुपमा जी अब भी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। आरवी ने उनकी बातें सुनी तो किसी तरह खुद को संभालते हुए सूनी आँखों से उन्हें देखते हुए बोली, नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, मैं बाहर से खाकर आई हूँ, आप खा लीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत थकान हो रही है तो कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। आरवी ने जितना हो सकता था उतना अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत रखते हुए जवाब दिया। अनुपमा जी ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। आरवी तुरंत ही सीढ़ियों की तरफ दौड़ गई, क्योंकि अनुपमा जी का ममतामयी स्पर्श उसके धैर्य को समाप्त कर रहा था। खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी, आंखें छलक आई थीं, अगर कुछ देर और रुकती तो खुद को रोक नहीं पाती और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ती, पर वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, इसलिए तुरंत ही वहां से भाग गई। अनुपमा जी ने उसको इतना उदास और परेशान पहले कभी नहीं देखा था, पर वो भी विवश थी, जबरदस्ती उसके दिल की बात जान नहीं सकती थी, बस इंतजार कर सकती थी कि वो खुद उन्हें अपनी परेशानी बताए, और वही वो कर रही थी। आरवी अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करते ही बेड पर धम से गिर गई और तकिए में मुंह छुपाई फफक कर रो पड़ी। इतने देर से जिन आंसुओं को बाहर आने से रोका हुआ था वो अब उसके बनाए बांध को तोड़कर बह चले। अपना सारा दर्द और तकलीफ वो आंसुओं को सहारे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। कुछ देर रोकर उसने अपना मन हल्का किया, फिर उठकर बैठ गई। देखा तो प्लेट अब भी वैसी की वैसी रखी थी। अन्न बर्बाद नहीं चाहती थी तो अपना हुलिया ठीक किया, फिर नीचे जाकर खाना बाहर कुत्ते को डालाई, उसके बाद वापस कमरे में आ गई। दरवाजा बंद करके एक बार फिर उस लिफाफे से उन तस्वीरों को निकालकर देखने लगी। सच कह रहा था विहान, उन फोटो को देखकर कोई नहीं कहेगा कि जो हुआ वो उसकी मर्जी से नहीं हुआ, उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। लोग वही देखेंगे जो विहान दिखाएगा और वही सुनेंगे जो वो सुनाना चाहेगा। अगर वो चीख चीख कर भी अपनी सच्चाई का यकीन दिलाएगी कि उसने कुछ गलत नहीं किया है बल्कि उसके साथ गलत हुआ है, तो भी कोई उसके बात पर यकीन नहीं करेगा। आज होटल में जिन नजरों से वो लोग उसे देख रहे थे, कल की सारी दुनिया उसे उन्हीं घटिया निगाहों से देखेगी। अगर ये बात बाहर आई तो कयामत आ जाएगी उसकी जिंदगी में। वो तो बर्बाद होगी ही, पर लोग उसकी माँ को भी चैन से जीने नहीं देगी। उसकी मम्मी उसे जानती हैं, वो इन बातों या तस्वीरों पर विश्वास नहीं करेंगी। उन्हें पता है उनकी बेटी के अंदर उनके दिए संस्कार हैं, वो कभी ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकती, पर दुनिया तो उस पर विश्वास नहीं करेगी। अनुपमा जी का एकमात्र सहारा वही है। अगर विहान ने फोटोज लीक कर दी तो क्या होगा उसका और अनुपमा जी का? कैसे सह पाएंगी वो जब दुनिया उनकी परवरिश पर सवाल उठाएगी, जब उनकी बेटी को सब चरित्रहीन कहेंगे, उसको जिस्म का धंधा करने वाली करार देंगे, जब उसे बाजारों लड़कियों में शामिल कर दिया जाएगा जो चंद पैसों के लिए किसी को भी अपना जिस्म बेच देती है। क्या पता कल को उसकी वजह से अनुपमा जी के सतीत्व पर भी लोग कीचड़ उछालने लगेंगे। यही सब सोचकर उसकी रूह तक भय से कांपने लगी, डर आंखों में नजर आने लगा। क्या सच में अब वो विहान के उसके लिए बिछाए इस जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुकी है कि अपने और अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए उसको विहान की बात माननी पड़ेगी?
नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उस इंसान से शादी करने के बारे में वो सोच भी कैसे सकती है जिसने उसको धोखे से नशा करवा कर उसकी इज्जत आबरू को तार तार कर दिया, जिसने अपनी जिद पूरी करने के लिए उसको बर्बाद कर दिया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, जो उसे प्यार नहीं करता बल्कि शादी की आड़ में उसके जिस्म पर अपना एकाधिकार चाहता है। कैसे उससे रिश्ता जोड़ ले जिसकी वजह से वो आज इस भंवर में उलझ चुकी है, जिसमें वो और उससे जुड़े हर रिश्ते दम तोड़ देंगे पर उससे निकल नहीं पाएंगे। वो खुद से ही एक जंग लड़ रही थी, अपनी मजबूरी और बेबसी को देखकर रोना आ रहा था। कितनी मुश्किल घड़ी में थी, जूझ रही थी खुद के हालातों से अकेले, पल पल हिम्मत टूटती जा रही थी, धैर्य जवाब देने लगा था, टूटकर बिखरती जा रही थी, किसी से लिपटकर खूब रोना चाहती थी, अपनी तकलीफ बांटना चाहती थी, पर इतनी मजबूर थी कि किसी से कुछ कह तक नहीं सकती थी। घंटों वो अपने विचारों में डूबी रही। रात हो गई पर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। अनुपमा जी डिनर के लिए बुलाने आई पर उसने इनकार कर दिया। सारी रात विहान की बातों के बारे में सोचती रही। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था। रात के सियाह अंधेरे को सूरज की किरणों ने अपनी रोशनी से मिटाना शुरू कर दिया था। बाहर से पंछियों की चहचहाहट की आवाजें आने लगी थी। आरवी की आंखें जाने कितनी ही बार नम हुई तो कितनी ही बार वो बिखरी थी और खुद ही खुद को संभाला था। कितने ही दर्द में थी, रोना का मन कर रहा था पर उसने आंसुओं को पलकों से बाहर नहीं आने दिया। सुबह के 5 बज रहे थे। आरवी उठकर खिड़की के पास चली गई। उसने खिड़की खोली तो सूरज की उजली किरणें उसके चेहरे पर आकर पड़ी। रात के अंधेरे को उस उजाले ने निगल लिया पर उसके मन में जो सियाह अंधेरा था उस तक वो प्रकाश भी नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ देर तक वो खाली आंखों से आसमान को देखती रही, फिर मन ही मन कुछ फैसला ले लिया। बेड के पास आकर उसने अपना फोन लिया और खुद को हिम्मत देने के बाद विहान को फोन लगा दिया। विहान अपने बड़े से रूम के बड़े से बेड पर पसर कर सो रहा था। अचानक ही उसका फोन बज उठा तो उसकी नींद में खलल पड़ गई। उसने खींचते हुए हाथ बढ़ाकर साइड में पड़ा फोन उठाया और जैसे ही स्क्रीन पर उसकी नजर पड़ी उसकी सारी नींद एक झटके में उड़ गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गया, लबों पर तिरछी विजयी मुस्कान तैर गई। उसने फोन पिक करते हुए मुस्कुरा कर कहा, टू बी कंटिन्यूड।